Hari.
Thank you.
gauda habibon
जय ओम विष्णु पाद परमहंस सर्वगचाय सपा सप्तशी समाचिला ऐ श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णु पाद परमहंस सर्वगचाय सपा सप्तशी समाचिला भक्त सरंत ठाकुर के स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कवि वैष्णव वृंद की जय श्री रूप से सनातन भक्त रघुनाथ जीव गोपाल तदा सरगणाचार्य गोस्वामी प्रभु की श्री हरिदास ठाकुर की प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव जडि गौर भक्त वृंद की श्री श्री कृष्ण गोपाचार्य कुंदराधा कुंद गिरि गोदान की श्री वृंदावन धाम की सिंहथर धाम की सिंहपुन धाम की श्री जनकपुरी धाम की तुलसी महारानी भक्ति देवी की गंगा यमुनी देवी की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की शिशि गोनीताय की शिशि कृष्ण बलराम की शिशि श्याम सुंदर की गो प्रेम नंदे हरि हरि बोल समवेत भक्त वृंद की ओ ग्लोरियस टू दी असेंबल्ड डिवोटीज ओ ग्लोरियस टू श्री ग्रांची गुरांगा ओ ग्लोरियस टू श्री प्रभुपाद ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरयेत् नास्तपयेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवयां भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिके श्रीमद् भगवतम से पढ़ रहा है चौथा स्कंद अध्याय 21 श्लोक 48
पिता
पृथ्व्यां समां संजीवं शाश्वतीं यस्य दृश्यं अच्युतं भक्तिं सर्वां लोकैकां भर्तरीं वीरवार्य पिता पृथ्व्यां समा संजीव शाश्वते यस्य दृश्यच्युते भक्तिं सर्वलोकैकभर्तरीं वीरवार्य पिता पृथ्व्यां समस जीव शाश्वति यस्य दृश्यच्युते भक्ता सर्वलोकैक भक्तवी वेदवान्योपिता पृथ्व्यां समस जीव शाश्वति यस्य दृश्यच्युते भक्ता सर्वलोकैक भक्तवी
बोलिए माताएं
वीरवार्यां वीरं सर्वश्रेष्ठ पितां पिता पृथ्व्यां पृथ्विका समा वर्ष सजीव जीवित रहते शाश्वतीं सदा के लिए यस्य जिसका ईदृशी इस तरह अच्युत परमेश्वर को भक्ति भक्ति सर्व सभी लोक लोक ग्रह एक एक बर्तरी पलक अनुवादित परिशिल ऐसे व्यक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रोपार के द्वारा शिल प्रोपार की अनुवाद सभी सभी ब्राह्मणों ने पृथ्वीराज को इस प्रकार संबोधित किया हे वीर श्रेष्ठ हे पृथ्वी के पिता आप दीर्घ जीवी हो क्योंकि आप में समस्त ब्रह्मांड के स्वयं अच्युत भगवान के प्रति अत्यधिक भक्ति है तत्पर्या सभा में उपस्थित सर्व पुरुषों ने पृथ्वीराज को दीर्घ आयु प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया क्योंकि सभी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा तथा भक्ति अतु है यद्यपि जीवन की अवधि सीमित वर्षों की है कि तुम्हारी सौभाग्यवश कोई भक्त हो जाता है तो वो प्रभात जीवन अवधि को पार कर लेता है निस्संदेह कभी कभी योगी अपनी इच्छा अनुसार मरता है प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं भक्त की दूसरी विशेषता यह है केवल भगवत भक्ति के कारण सदा सदा के लिए जीवित रहता है। कहा गया है कि सजीवती, जो अपने पीछे अच्छी ख्याति छोड़ते हैं वह सदैव जीवित रहता है। विशेषतः भगवान का भक्त तो निश्चित रूप से सदैव जीवित रहता है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु रविंद्र राय से वार्तालाप कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सबसे बड़ा यश क्या है? रामानंद रॉय का उत्तर था कि जो महान भक्त के रूप में ख्याति प्राप्त है उसकी सर्वाधिक ख्याति है, क्योंकि भक्त वैकुंठ लोक में ही सदैव वास नहीं करता, किंतु वो इस संसार में भी अपनी ख्याति से सदा सदा तक जीवित रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्या ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभस्तं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदामायां ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च सैरूपं सैवदातं सहवलाभवतं वितन्तं सदैवं साधयतं सावदूतं दर्शनसहितं कृष्णचैतन्यमनोभावं श्रीराधाकृष्णपादं सैवलीलितं श्रीशिवन्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपाल शारदाधाकन्ता नमस्तुते तप्त कणिचल गौरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतावारे प्राणामणि हरे प्रिय वञ्चकपात्रभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च प्रीतायै पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दासकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीवैता गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीरवार्या पिता प्रीत्या समा संजीव शश्वती ये सीदृश्युत भक्ति सामोक बर्तरी। तो मैत्र ऋषि विदुर जी को उन्होंने बहुत विस्तार रूप से महाराज प्रीतु के जीवन के बारे में, उनके जो उपदेश के बारे में बताया था। तो प्रीतु महाराज भगवान के सत्यवेश अवतार है और कैसे इस भौतिक जगत में शासन करना चाहिए राज्य के रूप में उन्होंने दिखलाया था। सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है कि कैसे भगवान के शरण में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है वर्ण आश्रम के अनुसार। इसलिए सुदामा अध्याय में तो ये प्रीतु महाराज प्रजक और वहां पर सब उपस्थित ब्राह्मण वैष्णव को और नागरियों को प्रजा को उन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है। तो वान आश्रम के अनुसार हमको अपना कार्य तो करना है, लेकिन भगवान केंद्र में होना चाहिए, भगवान को, भगवान के लिए सब कुछ अर्पण करना चाहिए। जैसे कृष्ण भी भगवत गीता में कहता है अर्जुन को, यद करोषि यद याचनासि यद चाहोषि यद त्यत तपस्सि ताहुते तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। जो भी आप खाते या पाता है सबसे पहले मेरे को अर्पण करना है, जो भी कार्य कर रहा है मेरे लिए करना है, मेरे को अर्पण करना चाहिए। और तपस्या भी करता है इस उद्देश्य से कि भगवान संतुष्ट हो जाए। तो खुद महाराज परीक्षित स्वयं भगवान की उपासना आराधना करते थे, और शास्त्र के अनुसार राजा का शासन करते थे। ब्राह्मणों वैष्णव के आदेश अनुसार उनसे आशीर्वाद प्राप्त उन्होंने किया था, उनसे भी निवेदन उन्होंने किया था कि हमको उपदेश दे दीजिए कि कैसे सब कुछ करना है, और हमको आशीर्वाद दे दीजिए जिससे मैं अच्छा तरह से साधन भजन कर सकता हूँ, भगवान का स्मरण कर सकता हूँ, और तत्पश्चात राजा का शासन कर सकता हूँ और प्रजा इससे संतुष्ट हो जाए। तो वाना आश्रम के अनुसार चलना है और भगवान केंद्र में होना चाहिए। और तत्पश्चात उन्होंने भी स्पष्ट बताया कि हमको ब्राह्मणों के और वैष्णव की सेवा भी करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण और वैष्णव की कृपा के बिना आगे जाना संभव नहीं है। तो बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी है शास्त्र में कि ये राजा जो है अकेले का तो शासन नहीं करता है, उनके पास मंत्री है, और ब्राह्मणों का साला लेकर उनके आदेश के अनुसार सब कुछ कर रहे थे। इसलिए पृथ्वीराज स्वयं बताता है कि हमको ब्राह्मणों की वैष्णव की सेवा करना चाहिए और उनके आदेश का पालन करना चाहिए, और ऐसा करते हुए उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हुए हम आगे जा सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, और अच्छे तरह से भी इस भौतिक जगत में रह सकता है, और कोई समस्या नहीं है। जब ब्राह्मण वैष्णव संतुष्ट है तब भगवान भी संतुष्ट है। और इस अध्याय में उन्होंने भी बताया था कि जब हम ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा करता है तो भगवान इससे संतुष्ट हो जाता है, और आगे को यज्ञ अनुष्ठान भी करता है। जब यज्ञ अनुष्ठान तो आयोजन भी होता है और समय भी तो विधिवत पूर्वक तो करना ही है, और ये भी वहाँ पर भी सबसे पहले गुरु की अनुमति होना चाहिए, वो गुरु जान के आदेश अनुसार यज्ञ अनुष्ठान तो करना ही चाहिए, उनकी कृपा से तो भगवान संतुष्ट होता है। तो गुरु पूजा होना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान में सबसे पहले गुरु, इसके बाद इष्ट देव की पूजा होता है। ये पूर्वांग कारणा या कौशांदी का इसका नाम है। इसके बाद तो मुख्य कार्य जो होता है अलग अलग संस्कार जो है, जिससे दस विधि संस्कार है, और जब मंदिर के मंदिर की स्थापना होता है या ठाकुर जी के, सबसे पहले गुरु और इष्ट देव, हमारे तो यहाँ पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय गुरु गौरांग और राधा कृष्ण की पूजा होता है। ऐसे कहते हैं कि आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो
यज्ञ कर सकते, मतलब आहुति अर्पण करता है, घी अर्पण करता है, सामग्री अर्पण करता है अलग अलग मंत्र को चरण करते हुए। और इसमें भी कहता है पैसे भगवान संतुष्ट होता है जब आहुति अर्पण करता है, जब घी अर्पण करता है, सामग्री अर्पण करता है, यजमान और जो इसमें भाग लेता है संतुष्ट हो जाता है। और इसके बाद भी अंत में तो उदिच्य कार्य होता है, ये वैष्णव होमा होता है, आहुति अर्पण करना चाहिए। जो हमारे जो पहले पूर्वांग कर्म में जिन्होंने अपने जिनको हमने हमने उनकी उपासना किया है, तो गुरु गौरांग कृष्ण के जो परिकार, तो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पूजा करते हुए और अंत में आहुति अर्पण करता है सबको, ऐसे करते हुए तो यज्ञ अनुष्ठान होता है और इससे भगवान संतुष्ट होता है। लेकिन यहाँ पर भी बताता है जब घी और सामग्री अर्पण करता है तो भगवान संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जब वैष्णव की सेवा करता है, विशेष करके जब भोग या प्रसाद वैष्णव को देता खिलाता है तो इसे और संतुष्ट हो जाता है। और ब्राह्मण और वैष्णव के मुकर वृंद से भगवान भोग तो ग्रहण करता है। इसलिए हमने भी देखा है, सुना है और आजकल भी ऐसा होता है जब गुरुजन है तो जैसे माए तो भक्त लोग शिष्य जब भोग बनाता है तो गुरुजी के लिए, तो गुरुजी के सामने तो प्रस्तुत कर रहा है, उनको अर्पण करता है और भोग अर्पण करता है तो तब ग्रहण करता है भोग जो है। और क्योंकि ये गुरुजन वैष्णव शुद्ध वैष्णव तो है, शरणागत है, उनके दिल में भगवान विराजमान है चैतन्य महाप्रभु या राधा कृष्णा, और हमेशा कृष्ण के गुणगान करता है, तो कृष्णा उनके जीव पे, प्रभु ने भी लिखा है उनके जीव पे नाचता है या कान में नाचता है, क्योंकि जब शुद्ध वैष्णव कृष्ण के नाम को चरण करता है तो कृष्ण प्रकट हो जाता है। जब कृष्णा बोलता है शुद्ध वैष्णव तो कृष्ण जीव के ऊपर विराजमान है, कृष्ण बोलते तो सुनता है जीव के ऊपर, तो वहां पर भी विराजमान है भगवान और दिल है मन है शुद्ध वैष्णव के, और पेट में भी है और उनकी कृपा से तो जो प्रसाद जो पड़ता है इसका जश्न होता है, क्योंकि भगवान वहां पर है, उनके विस्तार रूप भी है। तो शुद्ध वैष्णव जब प्रसाद जब कुछ पता है तो जब भोग भी लेता है तो भगवान को तुरंत अर्पण करता है, क्योंकि इसमें लिए है, भगवान के चिंतन में लिए है, भगवान की सेवा में लिए है, तो इसलिए तो अर्पण करना जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उदाहरणार्थ प्रभुपाद भी बहुत बार ऐसे किया था कि पूछते थे, अच्छा तो जी अभी आप जो खाना जो है आपने अर्पण किया है, बहुत बार ऐसे किया था, पूछा था, और बताओ तो जब से मैं भोग देते थे प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद बोलते थे, जब भक्त लोग बोलते थे हमने तो भगवान का अर्पण नहीं किया है, तो प्रभुपाद ने बोला आपको पहले भगवान का अर्पण करना है, इसके लिए इसके बाद मैं प्रसाद लूंगा। उदाहरण के लिए कि हम कैसे करना चाहे, जैसे भोग बनाते भगवान का अर्पण करना चाहे इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं बोला, बहुत बार भोग जो बनाए थे तो ये ग्रहण करते थे और प्रसाद भोग आता है, क्योंकि ये शरणागत वैष्णव है, ये गुरुजान शुद्ध वैष्णव तो ऐसे ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शास्त्र में लिखा है, पृथ्वी महाराज भी यहाँ पर बोला है कि जब वैष्णव या ब्राह्मण प्रसाद या भोग भी लेता है तो इसका मतलब यह है कि कृष्णा या विष्णु ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के जैसे विश्व रूप है, विराट रूप, ये उनके मुख है, उनके मुखरविंद है। ब्राह्मण से आमुखम से बाहुरा जान्या क्रीडा उदाद्यागम शोधरा जायता पुरुष सूक्त में उल्लेख है कि ब्राह्मण जो है भगवान के मुखरविंद है, और क्षत्रिय ये उनके बाहु है, और वैश्यों के पेट है, और शूद्रों के पैर है। तो इसलिए और हमको भी मालूम है रूप गोस्वामी पाद उन्होंने भक्ति रसमृत सिंधु में भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि गुरुपद आश्रय, कि हमको गुरु के पास जाना है, उनसे शिक्षा लेना है, और उनके आदेश के अनुसार सब कुछ करना है, और जब संतुष्ट हो जाता है तो भगवान संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट है, और जब शुद्ध वैष्णव संतुष्ट नए है तो भगवान भी संतुष्ट नए है। यश प्रसादम भगवत प्रसादम यश प्रसादम नगदी गदोपी तो दयाम स्तुवम यशस्त्र संध्यम वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। तो कृष्ण भी कहता है भगवद गीता में तद्विधि परिपातन पर प्रश्न से उपदेक्षति देगे ज्ञानीन तत्व दर्शिन। तो हम गुरु या शुद्ध वैष्णव की सेवा करना चाहिए हमको, और तो विनम्र भाव में उनके पास जाना है, सेवा भाव सेवा वृत्ति होना चाहिए, तत्पर होने चाहिए, जो गुरु जी बोलता है इसके अनुसार हमको सब कुछ करना है, और प्रश्न भी पूछना है कैसे आगे जा सकता है हम, और क्योंकि ये भगवान के प्रतिनिधि है और इसलिए मार्गदर्शन देता है और आशीर्वाद भी देता है। जैसे महाप्रभु जब उनके पास कोई जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए, तो उन्होंने हमेशा बोला कि कृष्णे मति रस्तु, कृष्णा हमेशा अपने तो मन में विराजमान हो, और कभी कहते हैं काल्यनम भवतु मंगलम भवतु, और जैसे यहाँ पर भी आशीर्वाद तो दिया है दीर्घायु भवतु, दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, राज्य के लिए तो जरूरत है, अगर अच्छे तरह से शासन करता है तो प्रजा और वैष्णव चाहता है कि बहुत सालों के लिए जीवित रहे हमारा राजा, और क्योंकि उनके सहायता से हम अच्छे तरह से तो बना आश्रम के अनुसार सब कुछ कर सकता है। तो राजा भगवान के प्रतिनिधि है, और ब्राह्मण और वैष्णव भी भगवान के प्रतिनिधि है, और दोनों की कृपा से हम अच्छे तरह से रह सकता है और आध्यात्मिक मार्ग में आगे जा सकता है, और अच्छे तरह से भी भौतिक दृष्टि से रह सकता है। तो दीर्घायु तो के लिए आशीर्वाद भी दिया है यहाँ पर ये ब्राह्मण और वैष्णव जो यहाँ पर उपस्थित थे, तो कहता है वीर श्रेष्ठ, वीर पुरुष में इनमें से श्रेष्ठ है, क्षत्रिय में तो श्रेष्ठ थे, और कहता है पृथ्वी के पिता नरपति भी उनका नाम है, और तो आप दीर्घ जीवी हो आशीर्वाद देते थे यहाँ पर, और क्योंकि भक्त भी थे, और यहाँ पर भी खुद बोलता है क्योंकि आप समस्त आप हमेशा तो भगवान की सेवा में लीन है, आपके अत्याधिक भक्ति है, आपके पास शुद्ध वैष्णव है, और तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी अच्युत भगवान श्री अच्युत उनके प्रति आपके अत्याधिक भक्ति है आपके पास, तो इसलिए आप दीर्घ जीवी हो और जब राजा शुद्ध वैष्णव है तो सब अच्छी तरह से रह सकता है और आगे जा सकता है। तो और इस तपारिया में भी श्रील प्रभुपाद उन्होंने उल्लेख किया है कि जब कोई शुद्ध वैष्णव यश मिलता है तो ये यश तो हमेशा के लिए है। कीर्तिर यशा सजीव थी, जो अच्छा तरह से कुछ किया है जिन्होंने, तो उनके जो कीर्ति सदैव के लिए है। कीर्तिर यशा सजीव थी, सजीवित रहता है। और जैसे श्रील प्रभुपाद और पर्वताचार्यों जो हमारे संप्रदाय में है अभी भी जीवित है, जैसे रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, और आजकल भी हम उनके गुणगान करता है, क्योंकि ये श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण के शुद्ध वैष्णव है। तो जैसे महाप्रभु और कृष्णा उनके नित्य लीला है और इस भौतिक जगत में उनके यश तो सदा के लिए है, वैसे ही उनके शुद्ध वैष्णव उनके यश भी सदैव तो के लिए है। और इसलिए राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में, वार्तालाप में, तो महाप्रभु उन्होंने पूछा सबसे बड़ा यश क्या है, तो रामानंद रॉय उत्तर दिया था कि अगर कोई भक्त, अगर कोई भगवान के भक्त है और अच्छा तरह से जब उन्होंने कुछ किया है तो सेवा किया है तो प्रसिद्ध हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा यश यह है भक्त के, क्योंकि ये निरंतर भगवान की सेवा में लीन है। और इसलिए उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उनके यश भी रहता है, तो इसलिए यहाँ पर तो उल्लेख है तो तात्पर्य में भी कि ये जीवित रहता है, जिससे प्रभुपाद भी जीवित है, उनके यश भक्ति सिद्धांत और पूर्वाचार्यों। और लेकिन यह है कि हम तो वैष्णव जो है ये भी नहीं चाहता है कि मैं यशस्वी हो, मेरा यश हमेशा के लिए होना चाहिए, नहीं भी लोगों में बाद में रहता है। उनकी इच्छा भगवान की सेवा करना है, वैष्णव की सेवा करना है, दूसरे की सहायता करना है, बद्ध जीव के जो इस भौतिक जगत में उनकी सहायता भी करना है जिससे वे भी भक्ति मार्ग में आ जाए। नाम रुचि, उनके नाम रुचि है और वैष्णव सेवा में लीन है, और जीव दया, जीव बद्ध जीव के प्रतियों के दया है, दया भाव है, तो उनकी सेवा भाव है, सेवा वृत्ति है, और कुछ ना चाहता है भगवान से, सिर्फ सेवा करना चाहता है हरि गुरु वैष्णव के, और वापिस में कुछ ना मांगता है, यश भी नहीं मांगता है कि मैंने ये किया है तो मेरे गुण गा भी होना चाहिए, ये ना चाहता है, सिर्फ सेवा करना चाहता है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि शुद्ध वैष्णव जो अच्छी तरह से जिन्होंने प्रचार किया है तो उनके यश रहता है, जैसे प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, भक्ति विनोद ठाकुर और चै गोस्वामियाँ ये भी जीवित है अभी तक, और उनके यश भी जीवी, यश भी है आजकल, यशस्वी है। लेकिन हम विनम्र भाव में रहना चाहिए और हमेशा तत्पर रहना चाहिए गुरु वैष्णव और हरि की सेवा में। लीन होना चाहिए, दूसरे की सहायता करना चाहिए। जैसे राजा तो प्रीतम राज और शुद्ध वैष्णव गुरुजान जो है ये अपने लिए कुछ नहीं चाहता है और हमेशा तैयार है दूसरे की सेवा करने के लिए। ऐसा ना है कि अभी प्रसाद लेना है, इसके बाद आराम भी लेना है और रात को सोना है, ये भी जरूरत है। और लेकिन अगर किसी का कोई समस्या है, ये हमेशा तत्पर है सहायता देने के लिए है। ऐसा ना है कहता है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, हमेशा व्यस्त रहता है, भगवान का चिंतन कर रहा है, सेवा में लीन है। तो लेकिन अगर कोई उनके पास जाता है पूछताछ करने के लिए, सहायता मांगने के लिए, ये तैयार है सहायता देने के लिए हमेशा, तो टाइम समय निकालता है सबके लिए यथासंभव। कभी कम कभी ज्यादा, जो कालिदेश पत्र के अनुसार। तो राजा जैसे प्रीतम राज और वैष्णव शुद्ध वैष्णव गुरुजान जो भगवान के शुद्ध वैष्णव है, जो भगवान के प्रतिनिधि है, तो हमेशा तैयार है, तत्पर है सबकी सेवा करने के लिए। और ये भी जैसे राजा है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे भी है, जरूर उनकी देखभाल तो करता है और विशेष ध्यान भी देता है। लेकिन अगर दूसरे जो भी आता है उनके, मतलब यह है कि समभाव है, दूसरे की सहायता भी देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि तो राजा उनके ये जो प्रजा जो है राज्य में, ये जैसे उनके परिवार में उनके बच्चे जो है तो लगभग समान है, समान भाव है, समभाव है। ये भी मेरी बच्चा है, जो प्रजा जो है, जो नागरिया जो है राज्य में, ये भी देखता कि बच्चे के समान है और इसलिए उनके देखभाल भी करता है। लेकिन फिर भी जो परिवार में है उनका ज्यादा ध्यान देता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन उनके समभाव भी है, देखता है कि सब भगवान के दास है, भगवान के नित्य दास है, तो उनके समभाव है और सबकी सहायता तो करता है, तत्पर रहता है हमेशा। हरे कृष्णा। अभी 2 मिनट और है, कोई प्रश्न है? हाँ जी, माइक्रोफोन है यहाँ पर और माइक्रोफोन आया। हाँ जी, हाँ, ये कलयुग में यज्ञ की बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, तो हाँ, प्रभु जी पूछते हैं कि हमने चैतन्य चरितमृत में पढ़ा है कि चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में कभी यज्ञ नहीं किया है। हाँ, हवन तो यज्ञ कभी नहीं किया है, संकीर्तन किया है। हाँ हाँ, तो पूछता है कि यज्ञ करने में और हवन करने में कोई फायदा है। हाँ ठीक है, प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और अभी मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यह है कि जो चैतन्य चरितमृत जो है, ये महाप्रभु तो भगवान ही है और उनके अनंत लीला है और सिर्फ कुछ और अनंत शेष, सहस्र वदन अंत शेष, उनके सहस्र मुख्य है ना, अनंत शेष, ये पूर्ण रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु को गुणगान नहीं कर सकता है। वो क्या अनंत लीला है, अनंत अद्भुत लीला है श्री चैतन्य महाप्रभु के। और यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनका आविर्भाव तो हुआ मायापुर, और उनके पिताजी थे जगन्नाथ मिश्रा, एक ब्राह्मण थे और माताजी सच्ची माता है। और यह है कि शास्त्र के अनुसार जब किसी का जन्म होता है तो कार्य करना है, दशविध संस्कार जिसमें और अभी भी होता है, और शास्त्र के अनुसार है, गौड़ीय वैष्णव शास्त्र के अनुसार है। श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार है और उन्हें तो ये युग धर्म स्थापित किया है, यह है नव संकीर्तन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह मुख्य कार्य है नव कीर्तन, लेकिन दूसरे भी भक्ति के अंग है, जैसे भगवत श्रवण, प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा, साधु संगा, धाम वास महत्वपूर्ण है। ये तो अगर कोई सोचते मैं सिर्फ जप करूंगा, भगवान के बारे में सेवा करना जरूरी नहीं है, साधु संग लेना जरूरी नहीं है, कृष्ण कृष्ण नाम बिना है अगर आगे है तो ठीक है, लेकिन भक्ति मार्ग में आगे नहीं है तो आगे नहीं जा सकता है, संभव नहीं है। साधु संग लेना है, प्रभु जी की सेवा करना चाहिए, भगवत श्रवण करना चाहिए, कृष्ण के बारे में महाप्रभु के बारे में, इसके बाद अच्छे तरह से जप कर सकता है। तत्पश्चात यह भी एक गौण कार्य है, जैसे दशविध संस्कार, जब कोई पड़ा होता है बच्चे तो नामकरण संस्कार करवाना है। ये गोपाल दत्त गोस्वामी, नाम सुना है चे गोस्वामी के, महाप्रभु के घनिष्ठ वैष्णव है, नित्य सिद्ध परिकार में है, गौरलीला कृष्ण लीला में है, उन्होंने एक किताब लिखा है, सात क्रिया सारा दीपिका, सब क्रिया का सार जो है दीपिका उन्होंने दिखाया है। सक्रिया सब सारा दीपिका मतलब सक्रिया क्या है, ये जो वाना आश्रम के अनुसार जो कार्य जो है, और यहां पर विशेष करके ये दशविध संस्कार जो होता है, जो गृहस्थ आश्रम में है उन्हें पालन करना, उनको पालन करना ही चाहिए, कर्तव्य है। बच्चे पैदा होता है, नामकरण संस्कार होना है, होता है, वैष्णव के लिए भी जरूरत है। तो जैसे बहुत सारे गृहस्थ है यहां पर, उनके बच्चे भी है, तो सब यहां पर नामकरण संस्कार तो करता है, जरूरत है शास्त्र के अनुसार, या मेरे गौरी वैष्णव शास्त्र के अनुसार गोपाल भट्ट उन्होंने लिखा है इसमें दशविध संस्कार, नामकरण संस्कार। इसके बाद ये है कि अन्नप्रशनम संस्कार, पहले बार जब अन्न देते हैं बच्चे को, और किस महीने भी देना है ये भी लिखा है, लड़कियों के लिए पांचवा महीने में और सात षष्ठम महीने में लड़के को देना है। इसके बाद मोरू संस्कार, चुरकरण संस्कार भी करना ही है, विद्यारंभ संस्कार करना ही है, विवाह संस्कार होता है ना वैष्णव के लिए भी। और ये भी है कि माता जी पिताजी महाप्रभु के लिए भी करवाया था नामकरण संस्कार, किया भी था महाप्रभु के लिए, किसने किया, निरंबर चक्रवर्ती, ये सच्ची माता के पिताजी, ये ब्राह्मण थे, ज्योतिष थे, उन्होंने नाम भी दिया विश्वंबर, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन सा नाम दिया है ये भी पद्धति है, इसके अनुसार दिया था, लेकिन क्योंकि नीम वृक्ष के वृक्ष उनका जन्म हुआ इसलिए नाम दिया था सच्ची माता, दूसरी वहां पर उनकी सहेलियां नाम दिया निमाय। और इसके बाद अन्नप्रशन नाम संस्कार करवाया जगन्नाथ मिश्रा, विद्याराम संस्कार भी, विवाह संस्कार भी, और प्रभुपदन ने भी श्रीमद भागवतम में दशम स्कंद में एक तत्पर्य में लिखा है ये यहाँ पर कृष्ण के जन्म नामकरण के संस्कार के तत्पर्य में तो गर्ग मुनि उन्होंने किया था कृष्ण बलराम के लिए। ये सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रसिद्ध थे पुरोहित, लेकिन तो वास्तव में ब्रज में गुरुजान थे नंदा बाबा के संदिल्य मुनि और बगुरी मुनि, लेकिन क्योंकि प्रसिद्ध थे सबसे सर्वश्रेष्ठ है गर्ग मुनि को बुलाया था, उन्होंने किया था कृष्ण बलराम के लिए। तत्पर्य में भी प्रभुपाद ने लिखा उल्लेख किया है कि ये जरूरत है, ये जो यज्ञानुष्ठान जो होता है करना ही चाहिए, तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के आदेश अनुसार करना ही है, जो बाहर के लोग जो है स्मार्त ब्राह्मण के अनुसार नहीं, वैष्णव वीर के अनुसार करना चाहिए। और वहां पर गुरु गौरांग कृष्ण की पूजा होता है और उनके आशीर्वाद से तो सफल हो जाता है कार्य अनुष्ठान। ये संस्कार तो जरूरत है, करना ही चाहिए, लेकिन उस समय भी भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र को चरण करता है, इसमें भी बाल देता है। पुरोहित जो है जो जब कार्य होता है अनुष्ठान होता है तो प्रवचन भी करता है, कृष्ण का गुण गाता है, महाप्रभु का गुण गान करता है, उसे जाता है कि क्यों करना है ये और कैसे करना है ये अनुष्ठान यज्ञ और हवन, कैसे करना है, क्यों करना है, इसका फायदा क्या है, लाभ क्या है, लाभ है इसलिए करना ही है, फायदा है, आध्यात्मिक लाभ है, इससे आगे जा सकता है, बहुत महत्व जरूरत है गृहस्थ के लिए, करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद के आदेश है, भागवतम में तात्पर्य में लिखा है, और ये हमारी परंपरा के अनुसार है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुसार, सनातन गोस्वामी उन्होंने भी लिखा है हरिभक्ति विलास में कि क्या करना है क्या ना करना है, इसके बारे में भी कुछ उल्लेख किया है दसविध संस्कार। और जैसे जब फागु जी के मंदिर में स्थापित कर रहा है उसी समय भी यज्ञानुष्ठान होता है, जरूरत है, इसका लाभ है, आध्यात्मिक लाभ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नाम कीर्तन। इसलिए जब यज्ञ अनुष्ठान होता है नाम कीर्तन भी होता है शुरुआत में बीज में और अंत में, तो युग धर्मा है सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के अंग है नाम कीर्तन है, लेकिन दूसरे भी जरूरत है और इसका भी लाभ है, ऐसे करते हुए अच्छे तरह से जप कर सकता है, अन्यथा तो मुश्किल हो जाता है, और शुद्ध नाम का चरण करना तो मुश्किल है। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की। और देखिए जब यज्ञानुष्ठान भी होता है इसके बाद भी क्या है, महाप्रसाद भी मिलता है, और अब भी सब यहां पर पुरुष एक साइड मत जी दूसरे साइड लाइन 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 करके तो प्रसाद मिलता है। हरे कृष्णा। लाइन कहा है, यहाँ पर दो लाइन है, आई टेक फॉर अ होल फैमिली। ठीक है, चलो लाइन कहा है, ऐसा है और क्या। हरे कृष्ण। ये माता जी लोग लाइन में है, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी थोड़ा से उस साइड आइए। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण Thank you.